श्रद्धा उत्पन्न हो गई। ऐसे लोगों के लिए यह सब सुनना और समझना कुछ संभव, दूसरे लोगों के लिए यह संभव नहीं। कल हम लोगों ने इस वेणु जी के परिप्रेक्ष्य में नारद जी की प्रार्थना को कर, ये लीलाएं हमारे ऊपर में कृपा करें। लीला क्या कृपा करेगी? लीला भी भगवान है। भगवान का नाम यदि भगवान है तो भगवान की लीला भी भगवान ही है। उनका नाम रूप गुण लीला सभी अप्राकृत तत्व हैं और स्वयं वो भगवत स्वरूप है। जैसे भगवान किसी पर कृपा करते हैं, उनकी भक्ति भी वैसे ही कृपा करती है, बल्कि कथा के माध्यम से वो भगवान कर्णों के मध्य से हृदय में पहुंच करके भक्तों के हृदय में जितनी मलिनता को वो सबको शरद काल जैसे सबको शांत प्रशांत बनाकर और भगवान हृदय में आविर्भूत हो जाते हैं। ऐसी ये लीला कथा है। यदि इन लीला कथाओं को कोई श्रद्धापूर्वक श्रवण करे, निश्चित रूप में वो कृपा करते हैं। कल हम लोगों ने गुप्त किमा आचार दैन कुफल स्म वेणु दामोर दराधर सुधाम गोपिका भुंते स्वयं जदवस्थित दर्शन प्रदन हित सचो अस्तु मुमुक्त सर्वो जथारिया। कल इसका हम लोगों ने कुछ वर्णन किया। महाभागवती अनुरागवती गोपियों का कृष्ण से मिलने के लिए तीव्र उत्कंठा हो रही है तो उनका वो तो नित्य परिकर है, मिलन इसके पहले नहीं हुआ, किंतु उनका प्रत्येक मिलन ही मानो नया है, नया मिलन है। अभी तक तो उनसे मिलन नहीं हुआ, इसलिए इसको पूर्व राग बतलाया गया। पूर्व रागवती मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित, यदि कृष्ण से मिलना हो तो कैसे मिलने में वो दर्शन देते हैं, ऐसे जब तक उत्कंठा नहीं होगी तब तक नहीं। अब उत्कंठा में ये वर्णन कर रही हैं। पहले बतलाया बरहा पीडम नटवर बहु, कृष्ण के मुखारबंद का अंगों का उनके वस्त्रों का वर्णन किया। अब वर्णन करते 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 जैवान की तम अनुरक्त कटाक्ष इत्यादि का उन्होंने वर्णन किया। जो लोग उसका पान करने वाले हैं वो धन्य हैं और उन्हीं के नैनों की सार्थकता है। वो चिंतन ये करती हैं, कृष्ण का वर्णन करते 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 वो इतनी तन्मय और विक्षिप्त चित्त हो जाती हैं कि कल ही हमने बतलाया कि उनका क्रम कोई नहीं, जब भी उनको जो याद आई वही कहने लगती। यहां पर कृष्ण का वर्णन करने बैठी और वो कहती हैं गुप्त की मां चरदन कुशल अश्व वेणु, कृष्ण का स्वरूप गुण और महिमा वर्णन करने चली, किंतु उस समय में कृष्ण का वर्णन करते करते कृष्ण से जितनी संबंधित वस्तुएं हैं यदि उसके तरफ में उन्होंने थोड़ा देख लिया और देख लिया कि कृष्ण के प्रति उनका अनुराग है तो कृष्ण को छोड़ दिया और उन चीजों का वर्णन करने लगे। और ये कहती हैं कि हम जगत में सबसे दुर्भागा हैं और यही सबसे सर्वोत्तम है, ये सिर्फ थोड़ा सा भी कृष्ण के साथ में संपर्क है। ये भक्ति का लक्षण है, इसीलिए भक्त लोग दूसरों को आदर देते हैं, अपने सम्मान की भावना कभी नहीं रखते। और ये अंत तक महाभाव तक ये और बढ़ता हुआ चला जाता है। राधिका जी पुलिंदी स्त्रियों की वंदना करती हैं, आ हम कभी मर जाती और पुलिंद कन्याओं के रूप में जन्म लेती, यदि नहीं हो उनके चरण कमलों की धूली हमको मिल जाती तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता। कितना बड़ा दैन्य, कितना बड़ा दैन्य और किसी में नहीं होता। तो जितना ही भक्ति उच्च कोटि की होती जाएगी, सम्मान देने की भावना और स्वयं अमानी होने की भावना उसमें रहेगी। तो गोपियां यहाँ पर कृष्ण के मुखारविंद और कटाक्ष इत्यादि की बातों का वर्णन करते हुए देखा, अहो सखा लोग धन्य है। पशुपाल गोष्ठ्यं, पशुपालों की गोष्ठी में कृष्ण मानो उज्ज्वल नक्षत्र या तारका के समान है, मध्य मणि के समान है, जैसे हार में सब गुथे हुए हैं सोने के लिए, किंतु मध्यमणि जो होती है और उसमें बेशकीमती से बेशकीमती मणि उसमें जड़ दी जाए और बीच वाली वो मध्यमणि कहलाती है। कृष्ण और बलदेव जी यहाँ पर पशुपाल गोष्ठ्यां, पशुपालों की गोष्ठी ने नटवर कछु गायम, और नटवर की भांति मध्यमणि के समान है। सखा लोगों का परम सौभाग्य है, इसलिए गोप जाति तो है, कृष्ण भी गोप जाति में आए हैं, इसलिए इनका अधिकार है। कृष्ण के साथ में गले में बहियां दे सकते हैं, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, उनसे निकाल करके खुद भी बजाने लग गए, कंधों पर कंधा रख दिया। प्रत्येक अंगों के साथ में कृष्ण के प्रत्येक अपने अंगों को मिलाने की भी उनको सौभाग्य है। जब कुश्ती होती है तो क्या होता है, यदि कृष्ण को उन्होंने पटक दिया नीचे और कृष्ण गिर गए, उनका पैर कृष्ण के पैरों के ऊपर, बस्तक्षल बस्तक्षल के ऊपर में, मुखारबिंद मुखारबिंद की तरफ, हाथ हाथों से सख्त भिड़ा करके लड़ गए, इनके प्रथम अंगों की सार्थकता है। क्यों ये गोप जाति है और किसी को ये सार्थकता नहीं, सब तरह से ये तरह तरह की सेवा करते हैं, इन लोगों का सौभाग्य। किंतु ये मेरी बांस की लकड़ी ने? ये कुशलक्ष्म वेणो, ये निरी बांस की नीरस लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी, और उसमें भी छिद्र, एक दो छिद्र नहीं, सात आठ छिद्र इसमें, कैसी ये है न जाने कैसे इसने तपस्या की। कुशलम माने पुण्य, कौन सा पुण्य का संग्रह, कौन सी तपस्या की, कौन से तीर्थों में इसने स्नान किया होगा, ये क्यों परीक्षा कर रही है। इसलिए कह रही हैं, यदि हमको मालूम हो जाता है ये एक लकड़ी भी न जाने पूर्वजन्म में कौन सी तपस्या करके आज इसका इतना सौभाग्य जो हम लोगों गोप कुल में हम जन्म ली, हम लोग गोपियों की लड़कियां हैं गोप कुल में, कृष्ण भी गोप हैं, एक साथ में हम लोगों ने जन्म लिया ब्रज में, लंगोटिया यार कृष्ण की रही है? दोनों एक साथ में खुले पीली सरोवर जानते हैं, पीली पोखर खेल में ही रंग दिया, उनके हाथों को पीला कर दिया, पीला कर दिया, जब घर में चलने को ही तो लज्जा आई बड़ी, मैया देख करके और सब लोग आ गए, ये हाथ पीला कहां से कर दिया, विवाह तो तुम्हारा हुआ नहीं और मगनी तुम्हारी हुई नहीं, और तुमने हाथ कहां से, कौन किसने पीला कर दिया, पर जाकर के सरोवर में हाथ धो दिया तो वो भी पोखर हो गई। ऐसे ही कितनी लीलाएं उनकी हुई, हम लोग बचपन से उनके साथ में खेली कूदी हैं। जब गिरिराज जी का धारण किया, अरे तब गोचारण करने के लिए जब ये निकले हैं कृष्ण, तब से इस सुखी वंश नाल के साथ में इनका संपर्क हुआ, इसके पहले इसका कोई भी संपर्क नहीं था, और हम कब से हैं,
बचपन से ही हम लोग एक साथ हैं।
कृष्ण के समस्त धन का हम उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि साथ में हम लोग मित्र हैं, खेले हैं। किंतु आज जब से ये बंसी आई, कब से, गोपाष्टमी के दिन से, कृष्ण भी 5-6 वर्ष के, 7 वर्ष के शायद लड़के, पौगंड से अब निकल रहे हैं, वयसंधि की तरफ में अग्रसर हो रहे हैं। अब हस्ताक्षर जड़ा बड़ा चौड़ा विस्तीर्ण हो रहा है, अंगों में लावण्य बढ़ने लग गया, कांति आने लग गई, आंखों में कुछ नम्रता, कुछ लज्जा भी आने लगी, औद्धत्य छोड़ दिया, चोरी और ये सब बातें थी, ये सब धीरे धीरे अब ये छोड़ रहे हैं। अब कुछ उद्दंडता से, अब कुछ शिष्टता की तरफ में आ रहे हैं, आंखों में अब लज्जा भी धीरे धीरे आने लग गई है, कि तभी पूरी तरह से अभी नहीं आई। गोचारण करने के लिए गए और वहां पर थोड़ी सी बंसी सीख ली किसी से, इनका कोई गुरु होगा, सिखाया होगा, गुरु भी प्रसिद्ध है किंतु अभी बतला नहीं रहे। गऊओं को केवल चरा करके वो इधर उधर भटक रही हैं, उनको केवल संग्रह करने के लिए, वो ऐसे मान में नहीं आती हैं गायें। इतनी गाय चंचल हैं कि उनको एक जगह एकत्रित कर लेना बड़ा भारी कठिन है, बंसी ध्वनि के बिना कभी एकत्रित नहीं हो सकती उनके लिए। और तब से इसका संबंध हुआ और तब से अब क्या हो गया, हम लोग बहुत दूर से दूर होती चली गई। बंसी जितनी प्यारी होती गई हम लोग तो दूर होती गई। अब तो वो दिन रात उनके हाथों में रहने लगी, कभी पगड़ी में ऊपर में खोंच लेते हैं और कभी पगल में लेते हैं, कभी मुखारविंद में लेकर के धारण करके प्रेम से आंखें बंद कर त्रिभंग रूप में बजाते हैं, जगत को भी बीसमारित करते हैं, स्वयं भी बीसमारित हो जाते हैं, और कभी जठर पटयों में। जठर पटयों मैंने क्या, जठर माने तेज और पट माने वस्त्र, पीतांबर, उनकी संधि स्थली में, कहां यहां पर बांधा ने बस कर सके ऐसा, अपने अंग से कहीं भी इसको चिंत नहीं करते हैं, हम कहां रखते कहां रखते। और ये कैसी, कल इसकी हमने व्याख्या की थी, फिर भी मैं थोड़े से का करके तब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कृष्ण का अधर पल्लव कैसा है, वो फल होता है बिंब फल, अत्यंत सुकोमल, अत्यंत सुगर, अत्यंत पतला, जैसे दूध ले लो और थोड़ा सा हवा लगते हैं दूध के ऊपर, गर्म दूध में क्या होगा, एकदम बड़ी पतली सी, बड़ी पतली, हाथ लगाओ ना तो हाथ में वो लग जाएगी। ऐसे बिंब फल पकने के बाद में इतना सुकोमल हो जाता है, सुख जहां उस पर बैठा, चरण चोंच जो कुछ भी लग गया है बस झट वो फट जाता है, वहां जहां जहां उसका लगा वहीं से फट जाता है। कृष्ण के मुखारविंद पर ये लालानी है, रस से भरा हुआ है, ये उनका स्वर जो कितना मधुर निकलता है ये बंसी के माध्यम से, ये ऐसे बोलते हैं। किंतु जब ही ये बंसी बैठी, बंसी नहीं ये बेणु बैठा, बंसी होती तो हमारे दुख को समझती और मुरली भी समझती, इसलिए इनकी चीड़ है बेणु से। ये पुरुष होकर के भी और हमारे सामने ये कैसा करता है, जब अवशिष्ट रसंग, कृष्ण का मुखारविंद तो लाल है ना अधर, किंतु वो जुगल गीत में पांडु वर्ण बदलाया गया, पांडु बदर बदरी की भांति पांडु वर्ण, बदरी पकने पर कैसी हो जाती है? कुछ पीली, एक तो हरी होती है ना, जब हरे से पीली जब होने लगती है उसके रंग के समान कृष्ण का रंग कहीं कहीं बदला है, पीला में से वो हरा भाव निकलता है। श्लोक मुझे ये याद नहीं है, उसमें बदरी के जैसा पांडु वर्ण की बात लिखी है। तो कहते हैं यहाँ पांडु वर्ण कब होता है? जब खून कम हो जाता है शरीर में तब पांडु वर्ण होता है ना? पीला, पीलिया जिसको कहते हैं, पीलिया, क्योंकि रक्त अब नहीं है। तो कृष्ण कम खारविन दला, किंतु अब बंसी बजाते बजाते उनका ये रस चला गया बंसी में, तो वो कैसा बन गया? पांडु वर्ण बन गया। ओ, ये बंसी बड़ी सारी निरक्त है और निष्ठुर भी है, कृष्ण के जैसे कोमल अथरों को पी कर और इसको निरस बना करके अपने समान बांट जैसी ये बनाना चाहती है, निरस बनाना चाहती है। तो बड़ी ये ठीक है, ठीक बंगला, ठीक माने किसी से डरने वाली नहीं है, ठीक है, बड़ी ठीक है। हमारे सामने ऐसा कर रही, हम लोगों का अधिकार जहां, और हमारे सामने में क्या करती दिखाई, कौन क्या कर रही है, क्या दिखापन, वो अथर उसके गया ना उसमें बंसी में, तो वो निकला, निकल करके जो ब्रज में गोपियां थी सबके हृदय में प्रवेश करके उनको जोर जबरदस्ती खींच लाया, लेकर के खींच लाया। आजो कुमो अन्नो अन्नम अलक्षितो उद्यमा, सब अपने घर के कामों को छोड़ करके दौड़ी आई। ये किसने किया? बंसी ने किया, बड़ी ढीठ है। सबको बुला लिया, बुला करके देखो मैं इनका सब कुछ तुम्हारी संपत्ति का उपभोग कर रही हूं, तुमको जो कुछ करना है तुम कर लो। माने इस ढिठाई के साथ में वो कह रहे हैं, इतनी ढीठ है हमारे सामने, हमारे धन को उपभोग करके चोरी कर रही है और कह रही है जैसे तुमको जो कुछ करना है, मैं आ जाओ, दो चार बंदूक हाकावाज छोड़ दिया या हथगोला छोड़ दिया, आ जाओ देखो मैदान यदि जोर है तो। ऐसे ही गोपियों को मानो ललकारती हुई उनके सामने एक बुंद रस भी नहीं छोड़ा। महाभाव होती गोपियां, साधारण साधक नहीं, सिद्ध हैं, इतनी व्याकुलता इनके अंदर में है। जो कृष्ण से संबंधित होने पर कोई भी चीज उसके प्रति ही इनको ईर्ष्या असूया ये सब होने लगती है। असूया किसको कहते हैं? साधारण भक्तों में असूया नहीं होता, असूया मैंने द्वेष, हमसे ये बढ़ जाएगा नहीं, गुणों को देख करके अवगुण की कल्पना करना उसमें, ये ऐसा भक्त लोग नहीं करेंगे। प्रत्येक जीवों को सम्मान देंगे, जिवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, प्रत्येक जीवों को उत्तम अधिकारी हमारे प्रहलाद महाराज जी, प्रत्येक जीव में ही अपने भावानुसार भगवान का भाव जीवों में दर्शन करते हैं, ये उत्तम भक्ति का लक्षण बतलाया गया, भक्तों का लक्षण। जब पश्चत भगवत भाव आत्मा भगवती भूतानी उत्पन्न कर रहे हैं। हम भगवान के प्रति जैसी भावना रखते हैं कि भगवान हमारे सब खरस के आधार आराध्य हैं, बात्सल रस के हमारे आधार, हमारे मधुर रस के आधार, प्रत्येक जीवों को वो ऐसा ही समझता है कि ये ऐसा ही भगवान के प्रति ऐसा ही भाव, और भगवान में प्रत्येक जीवों को दर्शन करके अपने भावों के अनुरूप में भी उनको देखता है। भगवान का वो ऐसा ही प्यारा है प्रत्येक जीव। ये उत्तम भागवतों का लक्ष्य। जैसे यशोदा माँ ने विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण के मुख में देखा और प्रहलाद महाराज जी जैसे भगवान में ही विश्व को देखते हैं और विश्व में प्रत्येक जीव व्यक्तिगत रूप में वो देखते हैं, इसलिए उनके लिए सब गुरु हैं। हम और की तो बात नहीं जानते, प्रभुपाद के संबंध में सुना है कि किसी को वो शिष्य के रूप में देखते ही नहीं थे, सब हमारे विपत्त कारण बांधव है, किसी को भी शिष्य के रूप में नहीं देखा। जिसको किया उन सबको गुरु बनाया, किसी को शिष्य नहीं बनाया, शिष्य रहने नहीं दिया। किसी किसी वैष्णव आचार्यों में अभी भी ऐसा देखा जाता है, हम लोगों के गुरु जी ने देखा, माधव महाराज जी ने थोड़ा सा कुछ देखा विशेष रूप से, उनका शिष्य का शिष्य एक जगह शिष्य बनना बन कर लिया। पर्वत महाराज शिष्य की, और पर्वत महाराज जी का शिष्य भी एक जगह कहीं शिष्य कर लिया, या पर्वत महाराज जी माधव महाराज जी के शिष्य वासुदेव थे अभी भी हैं, वो शिष्य किया कोटा वाला। उसने निमंत्रण किया महाराज जी, तो महाराज जी पधारिए हमारा मंदिर में स्थापन करना है उसी दिन और उत्सव होगा। जिसने माधव महाराज जी के शिष्य सब लोगों ने माधव महाराज जी को निषेध, मत जाइए बदमाश, आपके जीवित रहते हुए ये शिष्य करने लगा। अरे भाई तुम लोग मना कर रहे हैं, हमारा वैभव बढ़ा रहा है जगत में, जो हम करते हैं और वही काम ये कर करके हमारी सहायता कर रहा है, जगत में इस चीज को बढ़ा रहा है, तो ये बुरा क्या हुआ? हम तो समझते हैं कि हमारी बड़ी सेवा हुई। ऐसा उदार सब लोगों का हो जाएगा, ये कम उदारता की बात नहीं। इसलिए वैष्णव को सम्मान देना, जीव मात्र को, वैष्णव को ही नहीं प्राणी मात्र को सम्मान देना, ये सहज बात नहीं। ये वैष्णवता की पहली कसौटी है। यदि ये थोड़ा थोड़ा आने लग गया वैष्णव मात्र को ही गुरु समझकर और उसको यथायोग्य सम्मान देने की भावना आई, तो अब वैष्णव राज्य में हम लोग प्रवेश कर सकते। और यदि ये नहीं हुआ, हम किसी को सम्मान नहीं देंगे, हम तो भगवान को देंगे और गुरुदेव को, हम तो भगवान को सम्मान देंगे और किसी को कभी कर सकते। इसलिए ये आज उस बंसी की ही के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं, ओ मैं अब जन्म लूंगी तो बंसी के रूप में ही जन्म, बांस होकर के आएंगे और कृष्ण के अधरों पर सब समय रहे, कृष्ण से जिनका जिनका संबंध है बस वही हम जन्म चाहती, हम दूसरा जन्म नहीं चाहती। और कल बतलाया था हमने, हृदन्यो हृषक तचो जमुना मानसी गंगा कुसुम सरोवर और ये सब जितनी नदियां और सरोवर, ये सभी आनंद से भर गए, उनमें मानो कमल फूल गए हैं, उनके रोए हैं रवे खड़े हो गए कमल से, कमल अब्ज इत्यादि बहुत से उनके ये सब नाम हैं, कल्हार इत्यादि बहुत से विभिन्न रंगों के हैं, ये सब मानो ये हंस रही हैं और आंखों से आंसू आ रहा है। हंसने पर भी कभी कभी होता है आंसू आ जाता है। हमारे वंश में ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो आज कृष्ण के अधरों पर सब समय खेलता है, ऐसा किसान अंगों से कभी नीचे नहीं उतारते, सोने में भी अलग नहीं रखते, ऐसा इनका प्रिय है। इसलिए आंखों से उनके आंसू आ रहे हैं और फिर सब कचो ये सब पुलकित हो रहा है, अंग अंग सब उनका रोमांचित और हर्षित हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि हम इसकी व्याख्या हम विस्तृत रूप में कल कर चुके थे, इसलिए हम आगे चल रहे हैं। कृष्ण से संबंधित हो भक्ति का लक्षण यही है। कहीं कहीं पर इतना हो जाता है ये भगवान से भी अधिक उस भगवान संबंधी वस्तुओं को आज अथवा कृष्ण जिसको अधिक प्यार करते हैं उनके प्रति भक्तों का आदर अधिक हो जाता है। कृष्ण का एक कमीज कुर्ता झिंग मट्टी लगा दिया कृष्ण ने तो जिसमुखा जी ने उसका कान पकड़ लिया, गंदा कैसे कर दिया, अब तो साफ करके लगाया। कृष्ण करने लगे, नारद जी आ रहे हैं कह रहे हैं अरे ये देखो तो ये कपड़ा थोड़ा सा मैला कर दिया है और कृष्ण का इसने कान गर्म कर दिया। कृष्ण रो रहे हैं ये कपड़े को अधिक प्यार करती है ना, कृष्ण के लिए ये कपड़े हैं। कहते कि नहीं, कृष्ण से भी अधिक कृष्ण जी से लालित पालित और प्रसन्न होते हैं उन चीजों के प्रति इन लोगों का ये होना ये उत्तम भक्ति के लक्षणों में से एक है। ये सबके लिए इसलिए गुरु जी से भी अधिक गुरु के जो प्रिय शिष्य हैं उनके प्रति आदर और सम्मान हो तो भजन राज्य में बहुत ऊपर उठ जाएगा, और नहीं तो गुरु की लाख सेवा करने पर भी गुरु भक्तों की सेवा नहीं कर सका। हम समझते हैं कि परमात्म राज्य में वो कभी भी उन्नत नहीं हो सकता है। हजार गुरु जी की सेवा करें और गुरु के प्रिय शिष्यों को उनका आदर करना ही, जिससे हम गुरु की सेवा सीखेंगे उनके चरणों में तो पहले होना चाहिए ना। भजन की कसौटी और रींग गुरु की सेवा है। हम कहां से सीखेंगे, गुरु जी सिखलाएंगे न कि गुरु के सेवक सिखलाएंगे, गुरु के सेवक सिखलाएंगे। ये सब गुरु जी नहीं कहेंगे जैसे हमारा पैर ऐसा कर दो दबा दो, हमारे मनोभीत क्या चीज है। गुरु जी के मुख से हमने सुना था जब प्रभुपाद वक्तृता देते थे तो सब लोग सो जाते थे, किसी के समझ नहीं। एक बार इंग्लैंड का कोई रिसर्च स्कॉलर आया, वंडरफुल वंडरफुल बहुत ही सुंदर वक्तृता दिया। तो निशिकांत संध्याल ने पूछा हाउ वंडरफुल, व्हाट यू थिंक दैट इट इज वंडरफुल, क्या चीज तुमने समझा कि वंडरफुल कर रहे हैं। ओ दिस इज दिस थिंग दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्या उन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आया जो उन्होंने किया था। आज तो भारतवर्ष में फिलोसफरों के पास में गया जितने फिलोसफर्स हैं बड़े बड़े, वो लोग हमसे पूछते थे हम उनको बतलाते थे, उनसे कोई ऐसी बात नहीं मैं नहीं समझ सकता। और इनकी भाषण में एक घंटा डेढ़ घंटा इन्होंने बोला, इसमें मेरे समझ में एक शब्द भी नहीं आया कि क्या इन्होंने कहा। बस इतना ही मैं समझ आई वंडरफुल। तो गुरु जी कहते थे कि प्रभुपाद जो कहते थे हम लोग नहीं और लोग नहीं समझते थे। फिर हम लोगों का क्लास होता था और क्लास में होता था कि प्रभुपाद जी ने क्या कहा, अब तब फिर उसमें आलोचना होकर के तब हम लोग समझ ये भी बैठे हैं ये प्रभुपाद जी का दर्शन किया इसलिए हम लोग इनका भी सम्मान करते हैं। प्रभुपाद जी को दर्शन किया, इनका चरण की धूलि साक्षात रूप में ली, कितने बड़े तो ये सौभाग्यवान है, कितने कितने वैष्णव लोगों का दर्शन इन लोगों ने किया। तो इसलिए पहले लोग प्रभुपाद जी के सामने नहीं पहुंच पाते थे, हम लोगों के गुरु जी का राग इतना बड़ा भारी था, सहजी उनके पास में कोई नहीं पहुंच सकता था। हमने देखा है गुरु जी के लिए बड़े लोग सब प्रभुपाद जी के बड़े सबसे एकदम पीछे बैठ करके खूब हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता से उनके पास में आ गए, इतना सम्मान करते। सहजी उन लोगों के पास में कोई नहीं पहुंच पाता था, तो प्रभुपाद जी की तो बात तो बहुत दूर है। तो ऐसे संतों का ऐसे गुरु सेवकों का सम्मान करना हम लोगों को देखना चाहिए, तब तो हम लोग चलेंगे आगे। तो किस विषय में कह रहा था, क्या ये कह रही हैं कृष्ण का वर्णन करने गई ने कृष्ण का वर्णन करने गए, उनके यहाँ पर एक फूल देखा, बस भूल गई कृष्ण को और फूल का वर्णन कर रहे, वो फूल कितना शोभाग्य है, भूल गई। नाक के ऊपर में एक तिल देखा, बस हो गया वर्णन उनका कृष्ण, बस तिल का ही वर्णन करने में लग गए। तिल तो अंगों का ही अंग एक है, ये फूल इत्यादि माला की वर्णन करना और सब चीजों का। उन्होंने कहा जो हो ये बंसी की बात छोड़ो, बंसी तो कृष्ण के अधरों पर विराजित रहती है और उनके हृदय का सार बंसी के माध्यम से मधुर के रूप में निकल करके विश्व ब्रह्मांड को मुग्ध कर देता है, यहां तक कि कृष्ण को भी। काष्ट्रियं से कल्पदायक देवी का कल देवी जी का कल मैंने क्या समग्र जगत को आकर्षित करने वाली, यहां तक कि कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली वो बंसी ध्वनि हो जाती है कृष्ण से निकल करके भी। कृष्ण तो बच्चे होकर के और हाथों पर चल रहे हैं, बंगला चटी उसी से हमारा गुरु जी अब पायर दिखे देखा क्या नो नुपुर तो बच्चे ना तो निजे दिखे देखे ना आखिरकार मारे नीचे तुम नुपुर देखे चलते आवाज पीछे ताकि देखते ना आवाज चलता है तब फूक करता है तब फिर उधर की तरफ में देखते। कृष्ण भी उस कल ध्वनि से मोहित हो जाते हैं। तो उस बंसी की हम कितना क्या कहें तारीफ, उसकी कितना हम बतला, उसको तो मुखों में धारण करते हैं, जठर पटरों में भी लगा लेते हैं, यहां लगा लेते हैं, बगल में रखते हैं, सोते हैं तो क्या करते हैं दोनों हाथों से दबा करके और यहां पर सो जाते हैं, कोई निकाल न ले, इतना आदर करते हैं। इसलिए ऐसा तो हम लोगों का जन्म में किसी जन्म में तपस्या के द्वारा नहीं होना संभव, कभी होगा ही नहीं। तो हम लोगों के लिए क्या संभव है, उनके चरणों से जिन चीजों का स्पर्श होता है ऐसे चीजों के लिए हम वंदना करते हैं कि हमारा वही जन्म हो जाए। तो वो चरणों से किसका संबंध है, कृष्ण के चरणों से सबसे अधिक। खाली पैर कहाँ चलते हैं, घाटों पर चलते हैं, घाटों पर भी नहीं वृंदावन की भूमि में चलते हैं। वो वृंदावन कहाँ है, इस पृथ्वी पर तो है, वृंदावनम सखी वो वृंदावनम सखी भुवो पितुने सुकीर्तिम जग देवकी सुत पदम बुदलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु अनुमित मयूर नित्यम प्रेक्षा दृशानि अवर्तानि समस्त सत्वम अवर्तानि समस्त सत्वम। ओ हम लोग बंसी नहीं हो सकती, गले में झुलाने वाली वैजयंती माला हो सकती है, अरे वर्चस्व में झूलने वाली नमस्कार है, कानों का कुंडल बनेगी आभा कानों, वो मुख पर सब समय डोलते रहते हैं, उनका जैसा स्वभाव क्या, वो तो हम लोग गोपियों के चुंबन का स्थान हो, भैया यशोदा लाल लड़ाती है, इतना आदर करती है, और वो कानून पर सब समय कृष्ण भजते हैं ना, नमामि स्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। ऐसे ही ये कानों में तो ये संबंध मेरे लिए संभव है, हम लोगों के लिए संभव मालूम होता है, यदि हो सकेगा अधिक से अधिक यही लालसा रखती हैं, उनके चरणों के स्पर्श में जो चीजें आ जाती हैं बस वही हमारा जन्म हो जाए, हमारे लिए जीवन था। हम गुरु जी के सेवक नहीं हो सकते, हम तो सेवकों के सेवक यदि हो जाएं और उनकी कृपा कटाक्ष का एक हेतु बन जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए, हम और कुछ नहीं चाहते, सेवक नहीं होना चाहते हैं, सेवक हो भी नहीं सकते। सेवक किसको कहते हैं, जो उनके मनोभिलाषा को सब प्रकार लौकिक अलौकिक पारलौकिक सब प्रकार की इच्छाओं को जो पूरा करने वाला है वो तो सेवक होगा। इसलिए कहते हैं कि वृंदावन ओ सखी वृंदावन भुवो वितनेत कीर्ति। ओ वृंदावन पृथ्वी की शोभा है, पृथ्वी की महिमा विश्व ब्रह्मांड में गोलोक वैकुंठ तक में भी जो उसकी महिमा का द्योतन कर रहा है। आज पृथ्वी पर यदि वृंदावन नहीं होता, वृंदावन पृथ्वी किस लिए, इसलिए कि वृंदा है मथुरा श्रेष्ठ है, किस लिए चत्र हरे जन्मना, यहां पर हरि का जन्म हुआ है। कहां जन्म हुआ है, गोकुल में जन्म हुआ, वो कहां है, मथुरा मंडल में ही है। अथवा यदि मथुरा को भी मान लो, एक दृष्टि से मुझे कभी कभी हमको लगता है सुखदेव गोस्वामी जी ने या व्यास जी ने कृष्ण का मथुरापुरी में जो वर्णन किया जन्म, एक तरह से बड़ा स्वाभाविक और कुछ युक्ति युक्त लगता है। कभी कभी इच्छा होती है कि हम भी मान लें कि मथुरा में ही उनका जन्म, कभी कभी इच्छा होती है। वही तो कारण, सब समय नहीं, सब समय ऐसा नहीं होता, कभी कभी किसी विचार से, कभी दृष्टि से, कोई दृष्टि से ऐसा मालूम होता है कि कृष्ण ने जानबूझ करके मथुरा में जन्म लियो है ने? और गोकुल में पालने झूले हैं, वो कितने हैं,
गोकुल झूले पालन,
गोकुल झूले पालन किस लिए। हो सकता है कि सभी कोई सहमत न हो, हम भी इसे सहमत नहीं है, तभी मैं एक दृष्टि केवल प्रस्तुत कर रहा हूं। मान लिया कि कृष्ण का जन्म नंदगांव में या गोकुल में हुआ, तो गोकुल की लड़कियां उनसे श्रृंगार रस से संबंध रखेंगी अपने भाई के साथ में, ये कैसे संभव होगा ना? हमारा मामा का लड़का हमारे घर में आ गया, बहुत ही सुंदर खूबसूरत, और हम अपने पिता की लड़की हैं। अब उस पर मुग्ध हो जाना कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है, मेरी बहनों की शादियां उनसे हो जाया करती थी पहले, समझ रहे हैं मेरी बात। देवकी जी ने कहा ना, हमारी जो लड़की हो गई हम तुम्हारे लड़के के साथ में शादी कर देंगे, और रुक्मिणी की लड़की, रुक्मिणी की लड़की रुक्मिणी के लड़के से शादी हो गई, उसने बलदेव जी ने मारा था रुक्मिणी को, खत्म कर दिया। तो यदि कृष्ण का जन्म मथुरा नंद वहां पर गोकुल में माना जाता है, तो उनके घर में आसपास में जितनी लड़कियां हैं और सब वो कृष्ण की बहन को लगेगी ना, तो बहन के साथ में तो ये विवाह होना या लुक छिप करके कुछ करना, ये तो बड़ा भारी व्यभिचार हो जाएगा, तो बड़ा भारी मुश्किल हो गया। अब इस दृष्टि से यदि मान लेते हैं ये कृष्ण जादव थे,
पृथु महाराज को तो देखा जाता है कि भाई बहन में शादी की,
वो थे शास्त्र बेकार है, यदि होगा तो किसी अपराधिक कार्य
की
वो भाई नहीं बन गए। तो मैं ये इसलिए, यद्यपि ये बात ठीक नहीं है सभी, मैं ये बतला रहा हूं इसलिए कुछ लोगों के लिए जो कि नीति और अनीति कृष्ण प्रेम में देखते हैं और जगत के नियमों को वहां पर लगाते हैं, ऐसे लगाने वाले लोग जो भौतिक और स्थूलवादी है, उन लोगों के लिए यही अच्छा है कि कृष्ण जन्म लिया मथुरा में और गोकुल में, वो पालित पोलित पुत्र। और जो प्रेम का संबंध जानते हैं, ये प्रेम किसको कहते हैं, लाडली शक्ति किसको कहते हैं, उन लोगों की दृष्टि में, उत्तम महाभागवतों की दृष्टि से कृष्ण का जन्म इसमें कोई असमंजस नहीं, इस रूप में इसको लेना चाहिए। तो यह कह रहे हैं वृंदावन सखी, हे सखी वृंदावन वो कितने कीर्ति, पृथ्वी की कीर्ति विश्व ब्रह्मांड के अतिरिक्त वैकुंठ और अयोध्या और मथुरापुरी में भी कृति को घोषित कर रहा है जो इन लोगों के लिए संभव नहीं है। वैकुंठ में कभी भी नारायण के पैरों का छाप नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? थोड़े खाली पैर से जाएंगे, ये सब संभव नहीं। अयोध्या में राम रहते हुए खाली पैर से गलियों में घूमेंगे, ये नहीं हो सकता। किसी कारण से विशेष परिस्थिति में वनों वनों में गए पिता के आदेश को पालन करने के लिए, तो वनों में तो ऐसा संभव कर हो सका था, किंतु अयोध्या नहीं, ये वैकुंठ राज्य के अयोध्या में ये सब होना कठिन है। इसलिए यहां कह रहे हैं वृंदावन सभी भोग, वैकुंठ से भी अधिक ये पृथ्वी है जहां पर कि ये वृंदावन है। और जहां वृंदावन में कृष्ण जग देव की सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी, लक्ष्मी माने यहां पर शोभा, शोभा माने यहां पर चिन्ह, जिसमें वज्र ध्वजा अंकुश त्रिकोण कवच इत्यादि सब जो 19 प्रकार के भगवत चरणों के जो लक्षण हैं कृष्ण में, बिना पैर बिना जूती और बिना किसी आच्छादन के वनों में विचरण करते हैं, घरों में भी गोकुल की गली गलियों में नंदगांव में ऐसा कोई द्वादश वन नहीं है जहां पर कि गईयों के पीछे पीछे खाली पैर नहीं घूमते हैं। उनके चरणों का डायरेक्ट संबंध इस पृथ्वी से होता है, पैरों का छाप घाटों के ऊपर में, जिसके लिए उद्धव कहते हैं आशाम हो चरण ऋण। ब्रह्मा जी कहते हैं तदभूरी भाग्यम जन्म तुम्हारा पटस्म इत्यादि कहते हैं। जब देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, जिन्होंने गोविंद देवकी सुत के चरण के धूलि को और उनके चिन्हों को लाभ दिया है पृथ्वी, पृथ्वी पर उनका ध्वज वज्र अंकुश इत्यादि है, यहां पर देवकी सुत का नाम क्यों ले लिया है? यहां पर कहते हैं दोनों आदि जीव गोस्वामी भी कहते हैं और चक्रवर्ती ठाकुर जी भी, दोनों ही ये टीकाकार हैं। ये दोनों कहते हैं कि जसोदा देवी का नाम भी एक देवी है, ऐसा हरिवंश पुराण में और दूसरे पुराणों में ऐसा नहीं करते हैं। देवकी जी का नाम जसोदा जी का, इसलिए वहां पर देवजी तो देवकी सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु अनुमित्त नयु मयूर निद्रम। वहां पर कृष्ण क्या करते हैं? गोविंद गोविंद की गोविंद की गावो बिंद की गो गो गाभी गोवत्स गो माने इंद्रिय, समस्त जीवों के समस्त इंद्रियों को वर्धन करने वाले, और मत्त मयूर नित्यम ऐसे जो गोविंद हैं मत्त होकर के वेणु वाद्य करते हैं, वेणु वाद्य से मयूरों का समूह एक धुने। पहले कृष्ण को देखा दूर से और देखकर के का करने लगते हैं, बड़े आनंद से भर गए। एक बात हम देखते हैं और सब जीवों में मनुष्य इत्यादियों में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुंदर होती हैं, आकर्षण अधिक होता है, किंतु मोर में कुछ उल्टा होता है, होता है कि नहीं? मोर में ये एक अद्भुत बात, मोर बहुत सुंदर होता है और बड़ा आकर्षक, और उसी को बड़ी बड़ी सूंघें होती हैं और उसको ऐसा कर भावपूर्वक नृत्य करता है। अभी यदि आप लोगों ने नृत्य देखा होगा कितने भाव घूमा से कभी आगे चलता है कभी पीछे चलता है, कभी ऐसे घूमता है कभी घूम जाता है, कभी उसको ऐसे कर देता है कभी ऐसे करता है। कोई देखते हैं कि पहाड़ी जातियों में या दूसरी सब जातियों में मोर का पंख या कुछ बना लेते हैं और उसको लेकर के नृत्य करते हैं, उसी को देख करके नागालैंड की साइड में, तो वो सब बड़ी भावुकता से नृत्य करते हैं, भूल जाते हैं। तो कहते हैं अनुमत्त मयूर नेत्रम। अच्छा, वेणु अनुमत्त, क्यों कहा वेणु? कृष्ण वेणु बजाए, उन्होंने देखा कृष्ण के अंगों की तरफ में और देख करके समझा नवीन मेघ आ गया और मेघ ये गर्जन कर रहा है। तो जब बंसी बजी तब बंसी के ताल पर उन लोगों ने नाचना आरंभ कर दिया, पंख फैला दिए और तरह तरह से जब जैसे जैसे कृष्ण बंसी बजा रहे हैं वैसे। अथवा वेणु अनु मयूर नृत्य देख करके पहले तो केका केका किया, केका केकी। गोविंद लीलामृत में बतलाया है के और का, के माने होता है पुल्लिंग, के माने कौन और का माने स्त्रीलिंग में कौन। जिन जो राधा जी के मान रूपी पर्वत के लिए अंकुश बंद करके उसको कष्ट देते हैं तो वो नीचे उतर जाती है, उस मान को भी खर्ब करने वाले ये कौन है।